आम व्यक्ति जो बुद्धि का मतलब समझता है वो विचार करने वाली या निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि समझता है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि बुद्धि यानी जीव, जो जानने वाली सत्ता है, मुझको पता है मैं जानता हूं, तो केवल जो जानने वाली सत्ता है, महाराज जी का बुद्धि से वो अभिप्राय है। लेकिन मैंने अपने आप को कहां कहां जोड़ रखा है, किस किस चीज को अपने साथ एक कर रखा है, और मैं अपने आप को क्या समझता हूं, पहले इसको तो समझना पड़ेगा यदि इसका निर्णय करना है। तो रामायण में एक पंक्ति आती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ता से फिर उपजही बहुशूला। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को देह समझता हूं, अर्थात मैं देह हूं, जो देह का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, ये धारणा मेरे अंदर बनी होती है। इसी को ही देह मद भी कहा जाता है और मोह ममता भी कहा जाता है। तो मैं देह बनकर संसार में घूमता हूं, देह बनकर सोचता हूं, देह बनकर ही मैं संसार के भोग विलास करता हूं, सुख दुख से मेरा संबंध रहता है। और ये भी भाव रहता है ये देह मेरी है, तो इसलिए मैं देह हूं और देह मेरी है, ये मोह ममता है, अर्थात मैं और मेरी। फिर देह करके जितनी वस्तुएं हैं वो मेरी हो जाती हैं, फिर वो जिन जिन से मैं सुख भोगता हूं वो सब मेरी हैं। तो ये फिर देह से ये आगे फैल गया, फिर देखो देह है ना, जहां से फिर उपजही बहुशूला, तो फिर ये मैं मेरी का चक्र जो है सारे संसार में फैल जाता है, नहीं? और फिर मनुष्य जो है वही प्रकृति के बंधन में आ गया, देह भी प्राकृतिक है और संसार भी प्राकृतिक है, तो इसमें पांच विकारों का जो है प्रभाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जीव जो वास्तव में अपने आप में विकार रहित है, अपने आप को देह समझने के कारण और देह के कारण जो वस्तुएं देह से संबंधित हैं उनको मेरी समझने के कारण, व्यक्ति इन पांच विकारों की आग में जलता रहता है। उसको समझ ही नहीं आती कि जिंदगी में मुझको बीमारी क्या है, मुझको करना क्या था, कर क्या रहा हूं, कुछ उसको समझ नहीं आती। तो जब किसी ऋषि के संपर्क में आता है ये मनुष्य, या इसकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो इसको विरासत में ही मिली है, शास्त्र कभी पढ़ता है या सही सत्संग कहीं श्रवण करने को का मौका मिलता है, तब ये विज्ञान ये समझने लगता है। जब ये विज्ञान समझता है और कि पूर्ण गुरु के जीवन को देखता है, उस पर जब इसकी श्रद्धा आती है, तब उनकी बातों को और उनके जीवन को उनका बारीकी से निरीक्षण करने की कोशिश करता है, तब पता लगता है। यदि हम महाराज जी को ही देख लें, मान लिया, तो महाराज जी संसार के सारे भोगों से बचपन से ही दूर थे, और 9 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर जंगल में जाना शुरू कर दिया था और वहाँ उनकी ये हालत थी कि जब प्रभु प्रेम में वो लीन हैं उस समय ना गर्मी का एहसास है ना सर्दी का एहसास है ना कुछ इंद्रिय भोगों की तरफ रुझान है उनका, तो उनका जो जीवन है बचपन से लेके आगे तक का वो आपको ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि ये व्यक्ति संसार का कोई सुख भोग नहीं रहा है। जो हमारे लिए दुख है उन परिस्थितियों को इसने जानकर स्वीकार किया है। जंगल का रास्ता तो दुख का ही रास्ता है ना फिर, लेकिन वहां भी ये इतना मस्त है, हम तो उसको मस्ती ही कहेंगे, कि इसको बाहर का होश ही नहीं। तो अंदर ही प्रभु प्रेम में ये लीन है। तो इसका मतलब है कि हम जो संसार में सुख समझ रहे हैं, संसार में जो है आनंद समझ रहे हैं, उसके जीवन को देखकर पता लगता है कि आनंद अंदर है, क्योंकि उसके जीवन से ये भी पता लगता है हमको कि ईश्वर है और ये अंदर ईश्वर की ही याद कर रहा है, ईश्वर के ही प्रेम में मस्त है। तो सत्पुरुष के जीवन को देखकर या उसके जीवन का स्वाध्याय करके मनुष्य को ये बात समझ में आती है कि केवल संसार की वस्तुएं ही सुख देने वाली नहीं है, इसमें तो सुख के साथ दुख भी है, चैन के साथ बेचैनी भी है, लेकिन जो अंदर ईश्वर है उसमें ऐसा चैन है कि इस शरीर को इस संसार को भूला भी जा सकता है। तो ऐसे सत्पुरुष की वाणी कभी पढ़ने को मिल जाए, ऐसे सत्पुरुष के शास्त्र कभी श्रवण करने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, या ऐसे सत्पुरुष के पास बैठने को मिल जाए, जैसा भी आपका भाग है, जैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले भाग्य के अनुसार, तब ये जीव जो है, क्योंकि श्रद्धा तो उसके अंदर पैदा हो गई है उस गुरु के प्रति, उस ऋषि के प्रति, तो उनकी बातों को, उनके जीवन को ये गहराई से समझने की कोशिश करता है। तब इसको इस भेद का पता लगता है। मान लिया संत अभिलाष ही पढ़ रहा हूं मैं, तो वायादि महाजी ने ये वर्ड लिखा है बुद्धि यानी जीव। अब ये वर्ड पढ़ते ही समतलवास में बुद्धि यानी जीव आप रुक जाओगे, हैं? ये क्या लिखा हुआ है? तो ये जो बुद्धि आपकी है, ये जो शब्द पकड़ लेती है ना तुरंत, ये बिना श्रद्धा के नहीं पकड़ेगी। और जब श्रद्धा क्या होती है, इस शास्त्र को पढ़ने से, इस शास्त्र को ठीक प्रकार से समझने से मेरे जीवन का कल्याण है, इस भाव के साथ जब उसको पढ़ते हो ना, तब बुद्धि इन बातों को पकड़ती है, नहीं तो पढ़ जाते हो ऐसे ही आप। तो एक वर्ड ही आपकी मतलब कि आपके मन को पकड़ लेगा एकदम से कि बुद्धि यानी जीव, यानी बुद्धि जीव एक चीज है। अब समतावलास को जब मैं पढ़ूंगा तो सबसे पहला मेरा वहां ध्यान जाएगा कि महाजी ने जहां जहां लिखा है ये बुद्धि का प्रयोग किया है शब्द का या जीव का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये एक ही चीज है। तब आप समतावलास के जो सही अर्थ है वो निकाल पाओगे, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ निकालते रहोगे आप। तो जीव कौन है? जो जीवन जी रहा है, जो जीवन जी रहा है, जो जिंदा वस्तु है। जिंदा वस्तु कौन सी होती है? जिसमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, जिसमें होश होता है। तो इसीलिए रामायण में आया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये बात कभी इस रामायण की सुनते हो आप, तब आपको कान खड़े हो जाते हैं आपके कि अच्छा, क्योंकि ईश्वर तो चेतन स्वरूप है ना, वो तो ईश्वर को तो चेतन स्वरूप कहा जाता है ना। वो तो प्योर चेतना ही है, तो चेतना तो मेरे अंदर भी है। इसका मतलब ये रामायण ठीक कर रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जीव चेतन स्वरूप है, इसीलिए कह रहे हैं वो ईश्वर का अंश है, क्योंकि जो पिता है वही तो बेटा बनेगा। तो ईश्वर जब चेतना स्वरूप है तो जीव भी तो चेतना स्वरूप है। जब वो प्योर चेतन है जीव, इसलिए वो कह रहे हैं चेतन के साथ अमल सहज सुख राशि, वो मल रहित है। मल का मतलब होता है विकार से, पांच विकार में से एक विकार भी जीव के अंदर नहीं है, जीव निर्विकार है। जिस जीव को अपना होश है वो निर्विकारी है। और सहज सुख राशि, जैसे ईश्वर में निज आनंद है, बाहर से आनंद नहीं आता ईश्वर के पास, संसार हम तो संसार में आनंद ढूंढते ना, तो ईश्वर तो आनंद की खान है, आनंद का स्वरूप है वो। तो सहज सुख राशि का मतलब यह हुआ कि जीव खुद आनंद स्वरूप है, उसके अंदर निज सुख है, उसको किसी सुख के लिए किसी संसार की वस्तु पर और व्यक्ति पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सुख के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं करेगा जीव, जो जीव होश में होगा। तो इसका मतलब हो गया कि मैं अपने आप को शुद्ध चेतन स्वरूप समझने के अतिरिक्त जो कुछ भी समझ रहा हूं, ये सब बुद्धि के विकार हैं या जीव के विकार हैं। जो कुछ भी मैं समझ रहा हूं सब विकार है 100%। आप अपने आप को अच्छा भी समझ रहे हो ना, वो भी विकार है आपका, क्योंकि किसी चीज के कारण अच्छा समझोगे आप अपने आप को। शुद्ध चेतन जीव जो है वो आनंद स्वरूप है, वो ना अपने आप को अच्छा समझेगा ना वो अपने आप को बुरा समझेगा। तो इसीलिए ये जो सबसे पहले हमारी जो गलती है वो है देह मद। अपने आप को देह समझकर या देह बनकर ये मानव जीवन व्यतीत करना, ये सबसे मूल अंधकार है आपके जीवन का। और इस देह के साथ जो कुछ भी आपने अटैचमेंट बढ़ा रखा है, संबंध बना रखा है वस्तुओं से, लोगों से, ये सारा ये मेरा है, तो इसी को मोह ममता कहते हैं। तो जीव इतनी गहरी मोह ममता में फंसा हुआ है कि इसको तो ये विश्वास ही नहीं आता कि ईश्वर है भी या नहीं है। ये तो बड़े भाग से कभी किसी सत्पुरुष पर विश्वास आ जाए, जैसे हम लोगों को महाराज जी की संगत मिल गई, या यूं कहिए कि हमारे पेरेंट्स महाराज जी से जुड़े हुए थे, उनके कारण हमारे अंदर महाराज जी के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई, तो उस श्रद्धा के कारण महाराज जी की बातों के प्रति भी श्रद्धा पैदा हो गई, उसमें हम भी कुछ कल्याण समझने लगे, अपना कुछ फ़ायदा समझने लगे, और इसलिए हम यहाँ तपोभूमि में आ गए। तो उसका मूल स्रोत क्या है, महाराज जी तो हुए, उनके कारण ये सब हो रहा है। तो ये हमारा भाग्य है, पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो इस जन्म में एक पूर्व ऋषि पर हमारा विश्वास आ गया, नहीं तो पता नहीं हम भी नकली गुरुओं के चक्कर में कहाँ कहाँ भटक रहे होते, कहाँ कहाँ बेवकूफियाँ कर रहे होते, अपनी मेहनत की कमाई कहाँ फूंक रहे होते, पता ही नहीं होता आपको। तो ये सौभाग्य है कि हमारा एक नेचुरल वे में बिना मेहनत किए हुए एक पूर्ण ऋषि पर विश्वास आ गया। अब पूर्ण ऋषि पर विश्वास का मतलब हो गया उनकी बातों पर, उनके ज्ञान पर, उनके शास्त्र पर, उनकी वाणी पर, हर चीज़ पे हमारा नेचुरल फेथ है। इसके लिए हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा है। तो अब हमारा जो अगला कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है कि हम उस सत्पुरुष के जीवन को बारीकी से देखें, जिसको महाजी कह रहे हैं सत्पुरुष के जीवन का अध्ययन करना उनके दर्शन करना है, यह है गुरु दर्शन। फोटो के दर्शन कर लिए या साक्षात महाजी को देख लिया मैंने शरीर को, वो दर्शन नहीं है। गुरु कहे क्या रहा, सत्पुरुष के जीवन का अध्ययन करना उनका दर्शन करना है, क्योंकि उनकी हर एक्टिविटी आपका मार्गदर्शन कर रही है। यदि आप उस बारीकी से उसके जीवन को नहीं देख रहे हो, यदि आपको पढ़ने को मिला है उनके जीवन के बारे में तो बारीकी से नहीं पढ़ रहे हो, केवल कहानी पढ़े जा रहे हो, कब पैदा हुए, कहाँ क्या किया, यही पढ़े चले जा रहे हो। और आपने समझ लिया मुझे सारी याद होगी जीवनी, अब मैं सुना भी सकता हूँ, तो आपने कुछ नहीं सीखा गुरु से। तो आम व्यक्ति यही करता है, सत्संगों में भी यही होता है। तो मान लिया एक ही एक्टिविटी है उनके जीवन की, उनसे जब पूछा गया महाराज जी आपके गुरु कौन है, तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी। जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तभी इनको पूर्ण बोध था कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है। इसलिए संसार में गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये बात हमने मान लिया, पढ़ ली या सुन ली, तो इस एक बात में क्या क्या भरा पड़ा हुआ है जरा विचार करके देखो। तो हमारी बुद्धि तो तुरंत सोचने को मजबूर हो जानी चाहिए, अच्छा 3 वर्ष की आयु में अंदर इनको ईश्वर का आनंद प्रकट था, और जिस आनंद में ये बचपन से लगे रहे, माँ सो रही है रात में खाट पे बैठे हुए हैं, जिसमें आनंद आ रहा है तो नींद कहाँ रहेगी वहाँ पर। यदि आपको कोई फिल्म भी देख रहा हो, आप देखते होंगे कि फिल्म बड़ी मज़ेदार है, तो आप सोने के समय भी जागते रहते हो और फिल्म देखते रहते हो। तो जिसको अंदर ही आनंद आ रहा है तो फिल्म के मुकाबले में तो लाखों आनंद होगा वो, जिसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते, उसको नींद कैसे आएगी फिर। माँ कह रही है कि मंगत क्या कुछ सपना देखा है, क्या कोई डर लगा है, नहीं माँ सो जाता हूँ, लेट गया माँ को दिखाने के लिए। तो लेकिन इसका मतलब ये कि इस देह के अंदर ऐसा आनंद है जो उस बालक 3 साल के बालक को जगाए रख सकता है, और उस आनंद में वो लीन है, नींद उसकी गायब है। और इतना ही नहीं, हम तो बचपन से कितना रोते हैं, कितना कलपते हैं, कितना माँ बाप को परेशान करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे सुख के लिए। तो हम क्या संस्कार लेके आए संसार में, और उस गुरु भी तो मनुष्य है, जिस समय वो बालक है उस समय तो मनुष्य ही है, वो हमसे श्रेष्ठ है, बस ये कह सकते हैं। उस समय गुरु तो नहीं है, ना वो ईश्वर है उस समय। ईश्वर माने ईश्वर के बारे में जानता है, ईश्वर के आनंद को समझता है, वो उसका अनुभव है उसको, है तो मनुष्य ही वो। तो ये जो वो लेके आया है साथ में बचपन से ही, मैं जब उसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझको तो अपने बारे में विचार आना चाहिए था कि इसका मतलब इसने पूर्व जन्म में कमाई की होगी इतनी, इसने कैसा जीवन जिया होगा कि वो अन्न इसका जो मौत के वक्त इसने कमाई की थी वो खोया नहीं, बचपन से इसको मिल गया, और मैं क्या कमाई करके आया हूं, कौन से भोगों की कमाई करके आया हूं, किस अज्ञानता में मैंने पिछला जन्म व्यतीत किया है कि बचपन से मैं वस्तुओं के लिए रोता हूं, पेट भरे हुआ है बाजार की चीजों के लिए रोता हूं, अज्ञानी बनकर कितना परेशान करता हूं, और ये भी है बालक, मां को कोई परेशान नहीं कर रहा। तो गुरु का जीवन आपको सोचने को मजबूर कर रहा है कि इसका मतलब ये वो कमाई है जो छूटती नहीं है, साथ जाती है। इसलिए गुरु ने वो कमाई की है जो रोने को मजबूर नहीं करती, जो संसार में फंसने को मजबूर नहीं करती, संसार में पाप करने को मजबूर नहीं करती। यदि ईश्वर की कमाई की जाए तो वो ईश्वर आनंद रूप है। बचपन से ही बिना किसी यूनिवर्सिटी पढ़े हुए, बिना किसी स्कूल में पढ़े हुए, ये विद्या मेरे पास होगी, ये अनुभवी विद्या है, इसके लिए अल्फाबेट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में आता है, पक्का विश्वास होता है कि पुनर्जन्म भी होता है। तो फिर आप आगे भी सोचते हो पुनर्जन्म होता है तो इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं तो वही हूं, इसका मतलब जिसने पिछले जन्म में कमाई की मैं तो वही हूं। जन्म किसका हुआ है, मेरा जन्म हुआ है या देह का जन्म हुआ है? आप अगली बात सोचोगे फिर, इसका मतलब देह का जन्म हुआ है। तो पहले तो यह सोचोगे मेरा मन कहां लगता है, संसार की वस्तुओं में लगता है, संसार की बातों में लगता है, संसार की तरफ देखता है। और गुरु का मन अंतर्मुखी है, वो अंदर ईश्वर की तरफ देख रहा है, उसका मन संसार की तरफ जा ही नहीं रहा, और आनंद अंदर उसके आनंद है। और मेरे मन के अंदर बेचैनी है, हर समय बाहर की चीजों के लिए रोता रहता है, परेशान होता रहता है, परेशान करता रहता है। तो इतना बड़ा अंतर मन के अंदर। तो आप हर चीज को बारीकी से विचार कर रहे हो, गुरु की एक बात ही सुनकर, इसको मनन करना कहते हैं। यह है गुरु के जीवन पर मनन कर रहा हूं। एक गुरु का वाक्य, एक गुरु का उत्तर सारा चिट्ठा जीवन का खोल देता है आपके। तो इसका मतलब जब मृत्यु होती है तो मैं बच जाता हूं, मेरा मन भी बच जाता है, मेरे संस्कार भी बच जाते हैं, देह मर जाती है, तो मैं कौन हूं? तब जब वो संतावला सामने आती है तब उसको समझ आ जाती है, अरे महाजी लिख रहे हैं कि अच्छा बुद्धि यानी जीव, तो इसका मतलब मैं वो हूं जो मरता नहीं है, मैं वो हूं जो जानने वाली चीज है, जानने वाली सत्ता है, जो जीवन जी रही है। तो मैं जीवन जी रहा हूं इस देह को अपने संग रखकर, क्योंकि जीवन तो देह के द्वारा ही जिया जाता है ना। तो जीवन मैं जी रहा हूं लेकिन देह के द्वारा जी रहा हूं। जैसे ट्रेवल करता है तो कोई ट्रेन में बैठ जाए तो ट्रेन के द्वारा वो ट्रेवल कर रहा है, अपने आप को थोड़ा भूल गया वो। जब शास्त्र को पढ़ता है तो वहां वो एक वचन पढ़कर गहरे मनन में उतर जाता है, उस मनन में उसका घंटा निकल जाएगा पता ही नहीं उसको। इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता आपने एक दिन में एक वचन पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ दिया पूरा, आपने मनन कितना किया, उसको सीखा कितना, ये काउंट करता है शास्त्र पढ़ने में। तो अब बताइए कि गुरु के जीवन की एक घटना, या यूं कहिए कि एक उनका वचन, एक उनका उत्तर कितना बड़ा सोचने के लिए खजाना खोल दे रहा है, विचार करके तो देखो। तो इसका मतलब मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, फिर बंधन मुझको क्या है? बंधन मुझको फिर इस मन का है और इस देह का है, और देह करके संसार का है। क्योंकि मन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर और देह को कहते हैं स्थूल शरीर। जो चीज सूक्ष्म है वो जलती नहीं है, उसको कोई आप नष्ट नहीं कर सकते। जो चीज स्थूल है वो नष्ट हो जाती है। तो मन आका बच गया, वैसे के वैसे सुरक्षित रहा, और देह मन के ही अनुसार, आपका कर्मफल भी मन में सुरक्षित है, आपके संस्कार भी मन में सुरक्षित हैं, आपका स्वभाव भी मन में सुरक्षित है। तो मन वही है लेकिन उस मन के अनुसार आपको नई देह प्रभु ने अपनी शक्ति से प्रदान कर दी, और नई देह में प्रारब्ध भी प्रदान कर दिया। जैसे जैसे आपके पिछले जन्मों के कर्म थे उनके फल के भोगने के लिए और कर्म करने के लिए। तो जिस देह को आप मेरी बोल रहे हो, आप प्रैक्टिकली देखो ये देह तुम्हारी है ही नहीं, क्यों, जो मेरी होगी वो तो मेरा हुक्म मानेगी ना, और आपको पता नहीं है, देह आपका हुक्म नहीं मानती। और इसका पता महर्षि रमण के प्रश्नोत्तर से ही लगता है। वो कहते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कार्य इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे अब आप सोचते हो ये क्या मतलब है, एक महर्षि क्या कह रहा है ये बात। ये बात सुनते ही या पढ़ते ही आप इस बात के गहरे मनन में उतर जाओगे, यदि आपको बातें पढ़ना आती है, शास्त्र पढ़ना आते हैं तो। कि इसका मतलब जब देह अपने आप में तो जड़ है, अपने आप तो कार्य नहीं कर सकती है, और मेरे चाहने ना चाहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, देह प्रारब्ध के अनुसार ही चलेगी। इसका मतलब इस देह को चलाने वाला मेरी देह के अंदर जो ईश्वर सत्ता है वो मालिक है इस देह की, मैं मालिक नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, ये ईश्वर की ही है। ये जब मेरे अधीन ही नहीं है ये, तो ईश्वर की नहीं होगी, ईश्वर ही कारण करता है, ईश्वर ही चला रहा है इसको। जिंदा मैं इसको नहीं रखे हुए हूं, सो जाता हूं लापरवाह होके, ईश्वर सब कुछ करता रहता है इस देह के कारण। तो हर एंगल से यदि आप मनन करने वाले हो तो आपको यह पता लग जाएगा कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। और शास्त्र जब पढ़ोगे आप, मान लिया गीता भी सुनोगे आप, तो बड़े ध्यान से सुनोगे आप, वहां भी तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये युद्ध तो पहले हो चुका, अर्थात अब तू जो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरे कहने से नहीं होगा, तुझको युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। वो कौन मजबूर कर रहा है, वो ईश्वर ही मजबूर कर रहा है। बाहरी रूप में कहोगे परिस्थितियां मजबूर कर रही हैं, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण तो ईश्वर ने किया है ना, वो माया जो है ईश्वर की फैलाई हुई है, वो रचना तो ईश्वर की रची हुई है, क्योंकि सबकी देह के प्रारब्ध ना, तेरी देह का प्रारब्ध ना कोई, और प्रारब्ध ईश्वर के अधीन काम कर रहा है। तो इसका मतलब कृष्ण ने जब कहा ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि अर्जुन का विश्वास था कृष्ण के ऊपर, फेथ था, श्रद्धा थी पूर्ण, इसलिए उसने कह दिया कि मुझको स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति लब्धवा। अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, समर्पण कर दिया अर्जुन ने कृष्ण के आगे। और हम अपनी अकल के आगे, अपने मन के आगे समर्पण कर देते हैं, फिर भी सोचते मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। जैसा तेरे मन का स्वभाव है उसके अनुसार जो है क्रियाकलाप हमारा होता रहता है, भोगविलास होता रहता है, फिर भी समझते हैं बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान वो है जिसका समर्पण गुरु के आगे हो जाए, जिसका समर्पण गुरु के शास्त्र के आगे हो जाए, अर्थात जिसकी बुद्धि उसके अनुसार सोचने को, जो जीव उसके अनुसार सोचने को तैयार हो जाए और उस शास्त्र के निर्णय के अनुसार जीवन व्यतीत करने को तैयार हो जाए, वो बुद्धिमान है। नहीं तो वाणी साफ कह रही है कि इस बुद्धि को क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं। शास्त्र के अनुसार निर्णय करके चलना, इसको विवेक कहते हैं। और संसारी व्यक्ति में ये विवेक नहीं होता, इसलिए संसारी मनुष्य जो बड़े बड़े IAS बन जाते हैं, बड़े बड़े CEO बन जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन वाणी क्या कह रही है उनके बारे में, जब वो भी तो देखो जरा, बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो कोई। ये मनुष्य का जीवन नहीं है, ये पशु जीवन है, जिसके लिए लालायित होते हैं हम बड़े बन जाएं, बस बड़े अमीर बन जाएं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं हम, जिसके लिए हम लालायित होते हैं, पूरा इतना कीमती जन्म हम खर्च कर देते हैं उसके लिए, हमको पता ही नहीं है ये वाणी कह क्या रही है। वाणी जब पढ़ते हो तो जरा विचार तो करो अपने बारे में, ये वाणी क्या कह रही है। ये बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो खोई, ये तो पशु जीवन है, इंद्रिय भावों का जीवन तो ये पशु जीवन है। मां जी कहते हैं प्रेमी हर जन्म में इंद्रिय भोग मिल रहे हैं तुमको, कभी तृप्ति हुई इनसे? तो मनुष्य जन्म में आकर इस बीमारी को समझना था, इस रोग को समझना था तुम्हें, इस लोक को समझकर गुरु के निर्णय के अनुसार तूने अपने निर्णय को बदलना था और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार तूने ये मानव जीवन व्यतीत करना था। तो फिर वो गुरु का जीवन और गुरु का निर्णय क्या बता रहा है? आपको एक ही चीज बता रहा है कि ये जो प्राकृतिक जीवन है, ये जो प्रकृति जो पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और देह भी तेरी इन पांच तत्व से बनी है, इसलिए ये देह प्रकृति का ही अंग है। तो इसलिए यदि तूने देह बनकर संसार में कर्म किए, संसार भोगने की तूने कोशिश की, तो तेर तू अपने जीवन में केवल पांच विकार की कमाई करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जितनी भी तेरी डिजायर्स होंगी वो इनके वशीभूत होकर ही तेरे अंदर मन में पैदा होंगे। तो हर डिजायर जो तू पूरी करने की कोशिश करेगा वो तुझको विकार की तरफ ले जाएगी, विकार के संस्कार और गहरे कर देगी। इसलिए जो इंसान संसार में जितना ऊंचा है, संसार में जो इंसान जितना ऊंचा है उतना ही वो गहरा विकारी है। इसलिए कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति तो ईश्वर पर के मार्ग पर आसानी से आ जाएगा, लेकिन एक अमीर व्यक्ति का इस मार्ग पर आना कठिन काम है। असंभव तो कुछ नहीं होता, लेकिन कठिन काम है, क्योंकि उसके अंदर विकार बड़े गहरे हैं, उसके अंदर मोह बड़ा गहरा है, उसके अंदर अहंकार बड़ा गहरा है, उसके अंदर लोभ बड़ा गहरा है, जिसकी 100 रुपए की कमाई है वो कहेगा 10% दान करना है, 10 रुपए दान कर देता हूं, गुरु ने कहा है 90 में गुजारा कर लूंगा। जिसकी 1 करोड़ की कमाई है उसने 10 लाख दान करना है, अरे 10 लाख दान करने हैं, ये नहीं सोचेगा 90 लाख तो है मेरे पास, उसके 10 लाख दान करना मुसीबत है, विकार गहरा है ना। तो इसीलिए जो सादा आदमी है उसकी तो समझ में आ जाएगा कि पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसार, वो जल्दी सीख लेगा इसको, लेकिन अमीर आदमी इसको सीखने में 20 साल लगा देगा, हो सकता है सारी जिंदगी सीख ही ना पाए, क्योंकि उसका जीवन ही जा रहा है उसमें, तो जीवन ही वही है उसका। तो जब गुरु की बात हमको समझ आती है, समझ तभी आएगी जब गुरु के जीवन के द्वारा अपने विज्ञान को समझोगे कि मैं कौन हूं, मैं किस बंधन में हूं, मेरे जीवन में मुसीबत क्या है, मेरे जीवन की सफलता क्या है, ये हर चीज आपको फिर समता विलास से ही समझ में आ जाएगी। एक शास आपने समझ लिया सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मनन करने से समझ में आएगा, गहरे मनन में उतरना ही पड़ेगा। मैं आपके सामने जो आपके प्रश्न का उत्तर पेश कर रहा हूं ये मनन ही तो है, और क्या है, ये सोचने का तरीका ही तो है, ये बात तो छोटी सी है। तो फिर जीव को अपने बंधन नजर आते हैं, वो सारे बंधन देह में नहीं है, सारे बंधन मन के अंतर्गत है, क्योंकि मैं यदि सिमरन करने बैठता हूं, तपोभूमि आए हैं तो सिमरन तो करोगे यार, मैं जब सिमरन करने बैठता हूं तो सिमरन में बाधक कौन है? मैं तो कमरे में बंद होकर सिमरन कर रहा हूं, बाधक कौन है वहां पर? मेरा ही तो मन है, बार बार शिकायत करता हूं, प्रभु की याद करना चाहता हूं, महामंत्र जप करना चाहता हूं, मन जप नहीं देता। तो सारा जो अध्यात्म विज्ञान है, सारी जो गुरु शिक्षा है, वो आपके मन के रोग को तो समझा रही है, मन की साइंस को तो समझा रही हो कि जो कुछ भी तू करता है उसका इंप्रेशन, उसका संस्कार मन के अंदर बन जाता है। तो तेरा जो जीवन है वो मोह के कारण सुख पर आधारित है, और महाजी कह रहे हैं प्रेमी हर सुख दुख में बदल जाता है। शिक्षा क्या है वहां की? वो गुरु की, गुरु पर यदि विश्वास है आपका तो उसकी शिक्षा पर विश्वास होगा ना। गुरु कह रहा है हर सुख दुख में बदल जाता है, इसका मतलब जीवन में मैंने यदि सुख ज्यादा भोगने की या अपने परिवार को सुख ज्यादा देने की कोशिश की बने, तो इसका मतलब मैं बड़े सुख की तैयारी, बड़े बड़े दुख की तैयारी कर रहा हूं, जो भविष्य में अपने परिवार को देने वाला हूं, अपने जीवन में भोगने वाला हूं। जितने बड़े सुख की कल्पना आपके मन में है, उतने ही बड़े दुख को आपने भविष्य में भोगना ही भोगना है। दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। इसी सिद्धांत संतवास में लिखा हुआ है, हर सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए महाजी कह रहे हैं, प्रेमी, संसार में जो बुद्धिमान मनुष्य है वो मर्यादा का जीवन व्यतीत करता है। मर्यादा का मतलब होता है, इस देह को चलाने के लिए तेरी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, परिवार को चलाने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तेरा ध्यान केवल उन मूलभूत आवश्यकताओं पर रहता है, सुख भोगने की तरफ नहीं रहता। नीड बेस्ड लाइफ, डिजायर बेस्ड लाइफ नहीं, जीने का प्रिंसिपल ही अलग है। जो मनुष्य नीड बेस्ड लाइफ व्यतीत करता है उसकी बुद्धि होश में है। इसका मतलब उसने शास्त्र पढ़ रखे, शास्त्र को समझाया उसने, गुरु के मार्गदर्शन को समझाया उसने। तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम ही नहीं? अरे अपने लिए जी रहा है वो, हर मनुष्य अपने लिए जीता है। पढ़ाई में अपने लिए करता हूं, कमाई में अपने लिए करता हूं, परिवार में अपने लिए बसाता हूं, शादी में अपने लिए करता हूं। तो हर क्रिया के पीछे मूल में मैं ही हूं, अपने लिए करता हूं। मेरे बेटे को दुख पहुंचता है तो वो बेटा मेरा है, इसलिए मुझे दुख पहुंच रहा है। मैं उसके लिए समय खर्च करता हूं, पैसा खर्च करता हूं, तो मैं जीवन अपने लिए जीता हूं। लेकिन बहाने बनाता हूं, मैं तो परिवार के लिए जी रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ये बहानेबाजी है, ना समझिए। तो इसीलिए जब मनुष्य उस गुरु की शिक्षा को इतनी बारीकी से समझने की कोशिश करता है, हर चीज़ का एनालिसिस करता है, तब उसको पता लगता है कि मन की जितनी भी बीमारी है, जो मुझको सिमरन करने नहीं दे रही है, ये मेरी ही बनाई हुई है, मेरी ही पाली हुई है। अब ये कैसे दूर होगी? फिर वो देखता है गुरु की बात, गुरु कह रहा है कि ये दूर हो सकती है, तूने जीवन 5 नियम पर आधारित बनाना ही पड़ेगा, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण। इसका मतलब जो मेरा सांसारिक जीवन है, ये जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतना करने की कोशिश मुझको करनी ही पड़ेगी। और सांसारिक जीवन जो ज्यादा से ज्यादा सिंपल करोगे तो कमाई करने में कितना वक्त बच जाएगा आपका? सकता हूं कमाई भी तो कम करनी पड़ेगी, फिर एसेट्स भी तो कम आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, फिर तो कितना टाइम बच जाएगा, कितनी शक्ति बच जाएगी आपकी, कितनी मन की बेचैनी बच जाएगी कि 50 आइटम सुख के आपने घर में इकट्ठे कर रखे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए मन बाहर ही भागता रहता है। अब ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, अब ये ठीक करना है, इसका डिजाइन बदल गया, अब दूसरा लाना है, सारी आपकी 20 साल इसी में निकल जाते हैं आप। तो मन को भी फुर्सत मिल जाती है, मन की चेतन भी कम हो जाती है। धीरे धीरे इन 5 नियम पर चलकर मनुष्य अपने आप को सिकोड़ लेता है, संकुचित कर लेता है। तो संकुचित करता है जीवन को, तो फिर जो बुद्धि है, जो जीव है, वो इसके तनाव से आजाद होता है, नहीं होता है? तो फिर इस जीव का अटेंशन कहां लगेगा? अंतर्यामी ईश्वर पर लगेगा। फिर प्रेम से ईश्वर की याद कर पाएगा ये, प्रेम से ईश्वर की याद करने में सफल हो पाएगा ये। और जब बाहर के भोग विलास ही कम हो गए, इसके खर्चे ही बड़े कम हो गए, तो भी बेमानी क्यों करेगा ये? ये चोरी, मकारी, दूसरे को धोखा देना, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसी क्या बनाते हैं कि मेरा फायदा हो जाए भले ही दूसरे का नुकसान हो जाए। तो ये जो सांसारिक तौर तरीके हमने बना रखे हैं जीवन जीने के, इससे मैं आजाद हो जाता हूं, मेरी जरूरतें ही नहीं, मैं करूंगा क्या? और भविष्य का भय भी नहीं रहता आपके अंदर, खर्चे इतने कम है कि कुछ भी छोटी सी इनकम करके गुजारा कर सकता हूं। तो ऐसा व्यक्ति ये 5 विकार जो है ना, धीरे धीरे इनसे मुक्त होता है और इन विकारों की जगह उसके अंदर सद्गुण पैदा होने लगते हैं जो आप पढ़ के सुना रहे थे। संतोष पैदा हो जाता है, जितना प्रभु ने दिया है उसी में संतुष्ट हूं। सेवा भाव पैदा हो जाता है, जब मेरे पास बच रहा है तो मैं दूसरे का दुख दूर करने में, दूसरे का रोग दूर करने में खर्च कर देता हूं। दूसरे का दुख मुझे दुखाई पड़ने लगता है उसके प्रति भी मेरे अंदर प्रेम भाव पैदा होता है। यह भी तो दुखी जीव है, इसके अंदर भी तो प्रभु बैठे हुए हैं। जो प्रभु मेरे अंदर है वो इसके अंदर भी तो है। इसके जीवन को तो, इसकी परिस्थितियां तो प्रभु ने दी ना, तो दया आती है कि पिछले कर्म इसके इतने खराब हैं कि इसकी ये दुर्दशा है, दुर्दशा है। तो आप उसके अंदर प्रभु बैठे हुए हैं। महाजी कहते भी थे, प्रेमी यदि गरीब तेरे सामने आ जाए और फिर भी तू उसकी मदद ना करे तो फिर तू ईश्वर की हस्ती से मुनकिर है। मां जी ये वर्ड कहते थे, तू ईश्वर को मानने वाला नहीं है फिर। अरे प्रभु ने भेजा उस गरीब को तेरे आगे, दुखी जीव को। वो पात्र है यदि सेवा का, मकार भी हो सकता है कोई, लेकिन तुझे पता लग गया दुखी जीव वास्तव में है, तेरे पास कुछ है, मदद कर सकता है, उसे करनी चाहिए उसको। ईश्वर ने भेजा है तेरे पास, तुझे मौका दिया है अच्छा इंसान बनने का और तू चुर गया, भगा दिया उसको। तो ये जो गुण है महाराज जी ने जो संतरावास लिखे है, तो ऐसे जीव के अंदर जो होश में है, जो सिमरन करने वाला है, जो मन का शोधन करने वाला है, वो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम पर चलकर धीरे धीरे अपने मन के विकारों को, अपने मन की चंचलता को धीरे धीरे कम कर लेता है। और इसी मन के अंदर विवेक और वैराग्य पैदा हो जाता है। यदि किसी चीज में पता लग जाए कि पॉइजन मिला हुआ है, बड़ी स्वादिष्ट चीज थाली में रखे हुए, आप सो खाओगे, पता लग जाए इसमें पॉइजन, आप कभी नहीं खाओगे। तो संतरावास क्या लिख रही है, संतरावास महाजी क्या लिख रहे हैं, ये संसार देखने में सुखदाई प्रतीत होता है। अब वर्ड्स देखिए संतरावास के, ये संसार देखने में सुखदाई प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। जब ये सेंटेंस आप संतरावास से पढ़ते हो, इस पर कितने गहरे मनन की जरूरत है, विचार करके तो देखो आप। क्या आपने सारी जिंदगी में कभी विचार किया, महाजी को मानते हुए इतने वर्ष हो गए आप, उनकी बात पर विचार करते कहां हैं? इसलिए हमारी बुद्धि वैसी की वैसी सोती रहती है, संसारी के संसारी बने रहते हैं, जिंदगी की कीमत ही नहीं पता हमको क्या है हमारे। महाजी कहते हैं ये मानुष जन्म बेशकीमती है, प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए, ये दुर्लभ जन्म है भैया। मैं संसारियों की तरह से कटमर रहा हूं, संसारी व्यक्तियों की क्या कीमत है आखिर, ये दुर्लभ जन्म कर रहा है गुरु। लेकिन दुर्लभ कब है ये, प्रभु के सिमरनकार ने, यदि प्रभु के सिमरन के लिए किसी ने जीवन लगाया वो दुर्लभ जन्म है। इसीलिए आज भले ही कलयुग आ गया हो, कितना ही घोर भोगवाद फैला हो, आज भी जो ईश्वर भक्त है उसकी सबसे ज्यादा समाज में कीमत है आज भी। नहीं तो महाराज जी के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, महाराज जी ने हमको कौन सा सुख दे दिया, कोई इंद्रिय सुख दिया है हमको, क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? तो आज भी प्रभु भक्त की कीमत इस संसार में सबसे ज्यादा है। इसलिए यह दुर्लभ मानव जन्म है। मैंने अपने आप को, मैं जीव हूं, मैं बुद्धि हूं, बुद्धि रूप हूं, अर्थात नोइंग फैकल्टी हूं, जानने वाली सत्ता हूं, और इस सृष्टि में कोई जानने वाली सत्ता है वो केवल ईश्वर है। तो इसीलिए ईश्वर मेरा परम पिता है, तो मैंने अपने परम पिता के पास जाना है, संसार की गंदगी की तरफ, इन विकारों की तरफ नहीं जाना है। जिसने ये निर्णय कर लिया वो भजन में आनंद लेगा, जीवन को साफ सुथरा करेगा, इतना सिकोड़ लेगा कि उसको ना ज़्यादा कमाई की जरूरत है, ना ज़्यादा भोग विलास की जरूरत है, ना कोई पाप करने की जरूरत है। उसका जीवन देवता वाला जीवन खुद ही बन जाता है, वो केवल दूसरों को देता है, उसके जीवन से दूसरों को सुख पहुंचता है, दूसरों को चैन मिलता है, मन की बेचैनी दूर होती है और वो अंदर से प्रभु प्रेमी बनता है। तो ये है बुद्धि को अंदर सिकोड़ना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।